श्रीमद्भागवतम द्वादश कंद अध्याय चार ब्रह्मांड के प्रलय की चार कोटियां। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक काल की माप बतला चुका हूँ। मैंने ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दी है। अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलय की प्रक्रिया के विषय में सुनो। चार युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन होता है जो कल्प कहलाता है। हे राजा, इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती है प्रलय होता है। उस समय तीनों लोक विनष्ट हो जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है जिसमें आदि सत्रष्टा नारायण अनंत शेष की शैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय वे समूचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। जब सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते हैं। हे राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। हे राजन, ज्यों ज्यों प्रलय निकट आएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखों मर रही जनता एक दूसरे को सचमुच ही खाने लगेगी। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में यह विनाशकारी सूर्य वर्षा नहीं करेगा। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी, वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। ऊपर से दहकते सूर्य के तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा। भीषण तथा भयंकर विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और दूर से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। हे राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहेंगे। उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्माण करेगी। जब सारा ब्रह्मांड जल मग्न हो जाता है तो यह जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी गुण को भर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। तब अग्नि तत्व जल तत्व से स्वाद हर लेती है, जो अपने अद्वितीय गुण स्वाद से वंचित होकर अग्नि में लीन हो जाता है। वायु अग्नि में निहित रूप को ले लेता है और तब अग्नि अपना रूप होकर वायु में विलीन हो जाती है। आकाश वायु के गुण स्पर्श को ले लेता है और वह वायु आकाश में प्रवेश कर जाती है। तब हे राजन, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण ध्वनि को हर लेता है, जिसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को अपने में समा लेता है और सतोगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर लेता है। तब संपूर्ण महत तत्व मिथ्या अहंकार को उसके विविध कार्यों समेत ग्रहण करता है और यह महत प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो द्वारा जकड़ लिया जाता है। हे राजा परीक्षित, ये गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिगृहित हो जाते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव द्वारा उत्पन्न छह प्रकार के विकारों के अधीन नहीं होती, प्रत्युत इसका न तो आदि होता है न अंत। यह सृष्टि का अव्यक्त शाश्वत अव्यय कारण है। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं, उसमें न वाणी न मन न महत इत्यादि सूक्ष्म तत्व और न ही सतो रजो तथा तमो गुण होते हैं। उसमें न तो प्राण वायु न बुद्धि न कोई इंद्रियां या देवता रहते हैं। उसमें न तो ग्रहों की स्पष्ट व्यवस्था होती है न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं सुप्त जागृत तथा सुषुप्त ही होती हैं। उसमें आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि या सूर्य नहीं होते। यह स्थिति सुषुप्ति अथवा शून्य जैसी होती है। निसंदेह यह अवर्णनीय है, किंतु आध्यात्मिक विज्ञान वेता बताते हैं कि प्रधान के मूल वस्तु होने से यह भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। यह प्रलय प्राकृतिक कहलाती है, जिसके अंतर्गत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल के वेग द्वारा अव्यवस्थित हो जाने से उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। एकमात्र परम सत्य ही बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूपों में प्रकट होता है और वही उनका परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वह अपर्याप्त अवस्तु है, क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न है। दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख तथा देखा जाने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। इसी तरह बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का परम सत्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। यद्यपि वह परम सत्य उनसे सर्वथा भिन्न होता है। बुद्धि की तीन अवस्थाएं जागृत सुप्त तथा सुषुप्त कहलाती हैं। लेकिन हे राजन, इन विभिन्न अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह यह भौतिक ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भीतर अपने अव्यय रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विघटन से बनता और विनष्ट होता है। हे राजन, वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाला अव्ययी कारण पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्तु वस्त्र से अलग देखे जा सकते हैं। सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु ब्रह्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। निसंदेह जिसका भी आदि तथा अंत है वह असत्य है। भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किया जाने वाला रूपांतर उस परमात्मा के उल्लेख के बिना कोई चरम अर्थ नहीं रखता। किसी वस्तु के यथार्थ रूप में विद्यमान होने को मानने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसा ही गुण वाला नित्य तथा अव्यय होना चाहिए। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभूत द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान अथवा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान अथवा एक शरीर के भीतर की प्राण वायु तथा दूसरे की प्राण वायु में जो अंतर है उसके समान है। लोग विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार सोने का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में देखा जाता है। इसी तरह भौतिक इंद्रियों के लिए अगम्य भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में सामान्य तथा वैदिक रूप में किया जाता है। यद्यपि बादल सूर्य की ही उपज है और सूर्य द्वारा दृश्य भी होता है, तो भी यह देखने वाली आंख के लिए जो सूर्य का ही दूसरा अंश है अंधेरा उत्पन्न कर देता है। इसी तरह परम सत्य की विशेष उपज मिथ्या अहंकार जो परम सत्य द्वारा ही दृश्य बनाई जाती है, आत्मा को परम सत्य का साक्षात्कार करने से रोकता है। यद्यपि आत्मा भी परम सत्य का ही अंश है। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तितर बितर हो जाता है तो आंख सूर्य के वास्तविक स्वरूप को देख सकती है। इसी तरह जब आत्मा दिव्य विज्ञान के विषय में पूछताछ करके मिथ्या अहंकार के अपने भौतिक आवरण को नष्ट कर देता है तो वह अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से प्राप्त होता है। हे राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाले मायामय मिथ्या अहंकार को विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है और मनुष्य अच्युत परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रलय कहलाता है। हे शत्रुओं के दमन करता, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतर होते हैं और वे काल के प्रबल प्रवाह द्वारा तेजी से क्षरित हो जाती हैं। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थायी कारण हैं। भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की ये अवस्थाएं उसी तरह दृश्य नहीं हैं, जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार काल की प्रगति को चार प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है। ये हैं स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। हे पुरुषश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें भगवान नारायण की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी हैं। भगवान इस जगत के सत्रष्टा हैं और सारे जीवों के अंततः आधार हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में अक्षम हैं। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लंघ्य संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त नाव नहीं है। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की यह आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद से कही थी, जिन्होंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से कहा। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष श्रील व्यास देव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के ही तुल्य है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रलय की चार कोटियां नामक चतुर्थ अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए।